ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ करने के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नशीले पदार्थ की बार बार तस्करी में शामिल पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आज ये फैसला लिया गया। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से 10,33,00,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है।
एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया।
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए के बजट के साथ तकनीकी शिक्षा योजना में बहुविषयी शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए सहायता को भी स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ करने के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये निधि विशेष रूप से नक्सल प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा मार्गों के सुदृढ़ीकरण तथा पुल पुलिया निर्माण के लिए दी गई है। इन संरचनाओं के माध्यम से बस्तियों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों, बाजारों, विद्यालयों तथा स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 375 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 100 पुलों की स्वीकृति भी दी है। इसके साथ ही अब तक राज्य को कुल 715 सड़कें और 100 पुल प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत स्थापित होने वाले उद्यमिता केंद्र का निर्माण इस वर्ष से प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने IIM रायपुर और NIT रायपुर को कुल 172 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसमें 101 करोड़ रुपए IIM रायपुर को तथा 71 करोड़ रुपए NIT रायपुर को प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत नवाचार और उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगा।
इस MOU में 71 करोड़ रुपए हमारे नीट और राज्य सरकार को दे रहे हैं। इसमें श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार केंद्र की स्थापना होगी और इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा बेटा बेटी हैं, वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में उनको मतलब काम करने का अवसर मिलेगा और वो स्वयं रोजगार पाएंगे और रोजगार देने वाले भी बनेंगे।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 2 से अधिक बार शराब या अन्य नशे की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कल जगदलपुर में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने नशा उन्मूलन के लिए पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और दवा व्यापारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज कहा कि दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रवेश की बाधाओं को न्यूनतम करने और सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन तक हर संभव व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर मैगजीन स्टोर का शुभारंभ किया। श्री द्विवेदी ने कहा कि सेवा का उपयोग करने के लिए प्रतिमाह 99 रूपए या प्रतिवर्ष 999 रूपए देने होंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता शुल्क से 8 भाषाओं में 50 से अधिक टाइटल देखे जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालोद जिले के ग्राम बघमरा में 4 स्वसहायता समूहों की 20 महिलाएं दिन रात तिरंगा झंडा बनाने में जुटी हुई हैं और अब तक 6,000 से अधिक तिरंगे तैयार कर चुकी हैं। इन झंडों को बेचकर समूहों की महिलाओं ने अब तक करीब 2,00,000 रूपए की आमदनी कर ली है। स्वसहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि इस अभियान ने उन्हें नई पहचान दी है और इससे हुई आमदनी से वे बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें भी पूरी कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले के 13 स्वसहायता समूहों ने अब तक 8,000 से अधिक तिरंगे बनाकर बेचे हैं और 5,000 झंडों का अतिरिक्त ऑर्डर अभी प्राप्त हुआ है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान पर केंद्रित रहेगा। इस बार के अंक में संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल 9 अगस्त को FM चैनल पर सुबह 9 बजे से और प्राइमरी चैनल पर सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट से CBSE स्कूलों के विद्यार्थियों को वंचित किए जाने के मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में फैसला लिया था कि CBSE से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4,00,000 से ज्यादा बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रह गए। उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के निर्णय को गंभीर मानते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश BD गुरु की डिवीजन बेंच ने सड़कों पर रील बनाने और स्टंट करने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि अब तक रील बनाने वाले दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए क्या योजना बनाई गई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सड़कों पर रील बनाना और यातायात बाधित करना जैसे उपद्रव लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर 8,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि जिला पुलिस बल और ITBP की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद एक माओवादी को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। ये माओवादी डिविजनल कमेटी का सदस्य है और इसका नाम श्रीकांत पुनेम है। उन्होंने बताया कि इसके पास से बंदूक, मोबाइल, जिंदा कारतूस और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज बीजापुर जिले के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचकर IED विस्फोट में घायल ग्रामीण तथा भालू के हमले में घायल जवान से भेंट कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और चिकित्सकों को जवानों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीते 5 अगस्त को बीजापुर जिले के इलमिड़ी निवासी ग्रामीण प्रमोद कक्के माओवादियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आने के कारण घायल हो गए थे। वहीं बीते 29 जुलाई को बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके में गश्त के दौरान भालू के हमले में एक जवान बामन पोड़ियाम घायल हो गए थे, जिन्हें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। इस बार भी स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई तरह तरह की राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन राखियों की बिक्री से स्वसहायता समूहों को अच्छी आमदनी हो रही है। बालोद जिले में बिहान महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने धान, सब्जी, बीज और बांस से आकर्षक राखियां तैयार की हैं। इन राखियों को बालोद बंधन ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर दुर्ग जिले में स्थित सीमा सुरक्षा बल के रिसाली स्थित सामरिक मुख्यालय में विभिन्न महिला संगठन की महिलाओं ने आज BSF के जवानों को राखी बांधी। इस बीच राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में अनेक आयोजन होंगे। मुंगेली जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 21 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के चिल्हन गांव में 2 जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ करने के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नशीले पदार्थ की बार बार तस्करी में शामिल पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही की जाएगी और भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।